भोली सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य भूमि और इस परम दिव्य भूमि महापुरुषों के तपतेज से सन्निहित इस भूमि का आनंद लेते हुए नित्य प्रति की सत्संग सुधा वर्षा में हम और आप उन महापुरुषों के परम पुरुषार्थ के द्वारा पूर्णतया अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार में आकर के हम भगवान की जो परम मोहिनी विश्व मोहिनी माया है उसके प्रभाव में आते ही हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल साधारण, जिसको कहते हैं साधारण से साधारण रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो हमारा असीम अनंत लक्ष्य है वो हमसे बिसर जाता है। उसी की याद के लिए महापुरुषों ने सत्संग की जो सुधा वर्षा अमृत वर्षा जिसको कहते हैं सत्संग का जो है ये क्रम चलाया, तो उसका हम लोग नित्य प्रति आनंद ले रहे हैं। वर्तमान में श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भगवान की बाल लीलाएं जो हमारा आधार हैं अपने आप को समझने के लिए, अपनी गलतियों को अध्यात्म में सुधारने के लिए जिन लीलाओं का हम लोगों ने चयन किया है कि किस प्रकार से मनुष्य अपने स्वरूप से विमुख होकर जो है इस संसार में भटकाव को प्राप्त हो जाता है, और यहां पर असाधारण उदाहरण है कि किस प्रकार से साधारण की तो बात ही क्या की जाए, वेदज्ञ ब्राह्मण भी भगवान को समझने में नाकाम हो जाते हैं। और इसीलिए यहां पर दर्शाया गया क्योंकि भगवान की ये जो जगन मोहिनी माया है उसका स्वरूप किस प्रकार से वर्णित है कि जो साधारण सी दिखने वाली अंतःकरण शुद्ध जो उनकी धर्म पत्नियां हैं, उन्होंने महाराज जब अपने संपूर्ण सांसारिक भावों को छोड़कर केवल भगवान को ही अपने जीवन का आराध्य मान लिया, एकमात्र लक्ष्य जिसको कहते हैं, तो जैसे अर्जुन को जो है अपने लक्ष्य का संधान करने के लिए केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार से गोपी ये जो ब्राह्मण पत्नियां थीं वेदज्ञ ब्राह्मणों की जो है बिना पढ़ी लिखी है ना जिसको कहते हैं निरक्षर, ऐसी धर्म पत्नियों ने महाराज जो अपने हृदय में शुद्ध हृदय में भगवान को धारण किया, उसका परिणाम ये हुआ कि उनके अंदर से संपूर्ण द्वैत दुविधा समाप्त हो गई और भगवान ने जो है उनका जो है अभिवादन किया और उनका स्वागत किया कि जो है तुम्हारे प्रेम का मैं अभिनंदन करता हूं। और पुनः जो है क्योंकि भगवान को समझने के लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि जो हमारे प्राण हैं, हमारी जो सुंदर बुद्धि है, हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, या इस शरीर से संबंध रखने वाले जिनको हम लोग स्वजन कहते हैं, अपना परिवार कहते हैं, उसके बाद हमारे निकटस्थ रिश्ते हैं जिसको हम बिल्कुल अपना ही परिवार बोलते हैं, स्त्री है, पति है, पुत्र है, और इन सब चीजों को चलाने के लिए जिस विशेष रूप से समाज में धन की व्यवस्था की गई, उस धन के प्रति जो हमारा भाव जागृत हो जाता है, सत्य भाव जागृत हो जाता है, या उस धन से खरीदा गया जो संसार के पदार्थों का समूह जिसको हम लोग अपनी गृहस्थी बोलते हैं, कहते हैं भगवान उन गोपी उन ब्राह्मण पत्नियों के माध्यम से इन संसार की सभी वस्तुओं को जो ये गिनाया गया है, क्योंकि जिसके सानिध्य के माध्यम से इनमें चैतन्यता का हमको दर्शन होता है, चाहे वो प्राण हो, चाहे वो बुद्धि हो, मन हो, शरीर हो, स्वजन स्त्री पुत्र कोई भी हो, इसका जो संचालित होना इन सब चीजों का, या इनमें जो हमको आनंद की या सुख की प्राप्ति होती है या उसमें चैतन्यता का बोध होता है, जब उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब केवल उस आत्मा परमात्मा या साधारण से लीला स्वरूप में श्री कृष्ण कहा जाए, कहते हैं मुझसे बढ़कर उसका और कोई भी प्रेमी नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक साधारण सा बिना पढ़ा लिखा, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसको किसी बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, है ना। जैसे आप सूरज से मिलने जाओ तो सूरज के लिए क्या लेके जाओगे, दिया है? उसको हम प्रकाश नहीं दे सकते। आप किसी हलवाई से मिलने जाओ तो उसके लिए क्या ले जाओगे, मिठाई है? तो कपड़े वाले से मिलने जाओ, उसके लिए आप कपड़ा नहीं ले जाओगे। उसी प्रकार से जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको हम किसी प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान के माध्यम से या तरह तरह की उपासनाओं के माध्यम से उस परम शक्ति परम चैतन्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और भगवान को चाहिए केवल निष्कपटता निष्कामता, क्योंकि जहां पर कामनाओं की समाप्ति है वही परम ज्ञान की अवस्था कहलाती है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो है मेरा दर्शन कर लिया है, क्योंकि ये जो स्थिति है ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनको ब्राह्मणियों को प्राप्त, उसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने पूर्ण रूपेण अपने हृदय में जो है भगवान को ही समाहित कर रखा है, उसके अलावा उनको कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ऐसा जब समर्पण हमारे अंदर होता है तो वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर बाह्य भीतर दोनों ओर दिखाई देने लगता है। और भगवान ने जब इस प्रकार से उनको समझाया कि अब जो है तुम लोगों ने मेरा दर्शन कर लिया, जो तुम्हारे अंदर हृदय के भाव थे कि हम जो है भगवान का दर्शन करें, जो लीला विग्रह संसार की भाषा में तो महाराज वो एक साधारण सा नटवर वेश था, और उस नटवर वेश के दर्शन कर लेने पे साधारण मनुष्य को कोई तत्व दिखाई नहीं देता था, क्योंकि साधारण मनुष्यों के लिए तो क्या है, एक सांसारिक जो है गाय चराने वाला एक छोटा सा ग्वाल बाल है, लेकिन उसके अंदर असाधारण तत्व का दर्शन है ना। भगवान ने गीता में आश्चर्यवत पश्यति कश्चित दैनम, कोई एक आश्चर्य की दृष्टि से निहारता है हमारा, या उसी को दूसरी भाषा में भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। तो ये जो वाक्य हैं ये हमको समझाने की चेष्टा करते हैं कि मनुष्य जो है कोई एक ऐसा है जो भगवान को आश्चर्यमयी दृष्टि से देखता है, क्योंकि वही रूप भगवान का साधारण व्यक्ति के लिए बिल्कुल साधारण है, कोई उसमें तत्व दिखाई नहीं देता उसको, उसको ऐसा लगता है तो ये साधारण चीज है, इसमें क्या देखना। लेकिन जब उसका अंतःकरण शुद्ध होता है तब महाराज उसको हर चीज में, वस्तु में, पदार्थ में परमेश्वर का दर्शन होने लगता है। तो भगवान ने कहा कि देवियों अब तुमने जो है मेरा दर्शन कर लिया, यद या देव यजनम पतियो वो द्विजातया स्वसत्रम पारयिष्यन्ती युष्मा भी गृह मेदिना। कहते हैं अब तुम लोग जो है वापस जाओ और यज्ञशाला में जो है तुम्हारे पति जो गृहस्थ हैं वो तुम्हारे साथ मिलकर यज्ञ पूर्ण करेंगे। ये जो समन्वयात्मक रूप है हमारा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात जो हमारे यहां स्थिति दर्शाई गई महापुरुषों की, साधारण से जीवन में जीते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन मेरा इस तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, ना मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिसुलोके सुकिंचना, भगवान ने कहा ना गीता में कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन लोक संग्रहम, अभी आपने पढ़ा नहीं यहां पे, देखो आपने अभी ब्रह्मास्मि माला का पाठ किया और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो है महाराज जी ने लिखा क्या, यद्यपि मेरा जो है कोई कार्य नहीं है लेकिन किसके लिए, लोक संग्रह, कहते हैं लोके वर्ते, किसके लिए, हाँ लोके वर्ते निरिच्छोपि पूर्णम ब्रह्मास्मि निष्क्रम निष्क्रियम, कहते हैं ऐसा मैं निष्क्रिय हूं लेकिन जो ये मैं कार्य करता दिखाई देता हूं किसके लिए, केवल जो है लोकवर्त यानी लोकाचार के लिए, क्योंकि अगर मैं कर्तव्य पालन छोड़ दूंगा तो मेरी देखा देखी दूसरे भी अपने कर्तव्य को क्या कर देंगे। जिन्होंने अभी कर्तव्य को समझा भी नहीं वो पहले से ही उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। जैसे राजा जो है, समझने वाली बात यह है, जैसे राजा जो है वो बिना टिकट चलने का अधिकारी है, लेकिन अगर वो टिकट नहीं लेगा तो पीछे वाले क्या कर लेंगे, वो अपना जीवन का धर्म बना लेंगे। जब राजा टिकट नहीं लेता तो हमको टिकट लेने की क्या जरूरत। इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य राजा का बनता है कि वो जो है क्या करे, लोकाचार के लिए टिकट को खरीदे, जिससे पीछे बरतने वाले उसको क्या करें, अनुसरण करें। अगर राजा ही गलती कर देगा तो प्रजा जो है उसी प्रकार से गलत हो जाएगी। इसलिए उन देवियों को समझाया भगवान ने कि यद्यपि तुमने मेरा दर्शन कर लिया, बात समझ में आई कि नहीं। यानी भगवान का, परमात्मा का दर्शन का मतलब है आत्मसाक्षात्कार। यानी जो कुछ भी मनुष्य जीवन में तुमको प्राप्त करना था, परोक्ष अपरोक्ष दोनों रूपों में तुमने पहले ध्यान और चिंतन के माध्यम से मुझे प्राप्त किया, और अब साक्षात चर्म चक्षुओं से भी तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। अब इस संसार में वास्तविकता में तुमको कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया, लेकिन फिर भी क्योंकि गृहस्थ धर्म प्रारब्धानुसार तुमको जो है गृहस्थ धर्म प्राप्त हुआ है, और तुम्हारे ब्राह्मण पति जो हैं अभी ना समझ हैं। देखो कितना जोरदार उदाहरण है। वेदों के विज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, वेदज्ञ ब्राह्मणों को जो है भगवान से रहित दिखाया गया है, और बिना पढ़ी लिखी ब्राह्मणियों को हैं परमेश्वर के साक्षात्कार से युक्त दिखाया गया। परमेश्वर किसी की सीमा में बंधा हुआ नहीं है कि इसको ही भगवान मिलेगा, क्योंकि वो अनंत और असीमित है। जो भी उसकी वांछा करेगा, पापी हो, पुण्यात्मा हो, किसी भी रूप में हो, उसकी वांछा करने वाला उसको प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर जो स्थिति दिखाई गई है, क्योंकि तुम्हारे जो ब्राह्मण गृहस्थ पति हैं उनको अभी असली बात समझ में नहीं आई है ना, और स्वर्ग के सुखों को ही उन्होंने आपको बताया था ना, विज्ञान ही हमारा सर्वोत्कृष्ट, देखो सब, क्योंकि विज्ञान कोष, विज्ञान में जो कोष है या विज्ञान की या बुद्धि की जो अवस्था साधारण नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने जो है अपने स्तोत्र में, जिसको आप लोग जो है मानसिक उपासना का स्तोत्र कहते हैं, उसमें स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि ये बुद्धि कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा तम गिरिजा मति, है ना। मति को क्या माना, साक्षात भगवान की धर्म पत्नी गिरिजा। बोले गिरिजा कोई दूसरी नहीं, मेरी मति ही गिरिजा है, यानी भगवान की अर्धांगिनी, समकक्ष स्थिति है महाराज। इसीलिए हम लोग जो है विज्ञानमय अवस्था में पहुंच जाने पर, विज्ञानमय कोष में पहुंच जाने पर अपने आप को परम तृप्त अनुभव करने लगते हैं कि ऐसा लगता है हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तविकता में वो अभी जो है चौथा गेट है ना, पांच कोष है ना, पंचकोष में पहुंचने पर तब जाकर महाराज उसके बाद आत्म साक्षात्कार की अवस्था आती है, जो यहां पर ब्राह्मण पत्नियों की दिखाई गई है ना, क्योंकि इनको किसी प्रकार का अब कुछ भी करना नहीं था। हमारे यहां जो उदाहरण मिलते हैं, जड़ भरत के उदाहरण मिलते हैं, है ना, जिन्होंने महाराज ब्राह्मण जन्म में मृग योनि छोड़ने के बाद जब ब्राह्मण शरीर से जन्म लिया तो महाराज उन्होंने जो है गायत्री को भी याद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। गायत्री मंत्र भी याद करा करा के उनके भाई और पिता जो है परेशान हो गए, लेकिन महाराज उन्होंने गायत्री मंत्र को भी याद नहीं किया, क्योंकि जो कुछ उनको प्राप्त करना था वो सब कुछ क्या कर चुके थे। अब इन सब चीजों का उनके साधारण से जीवन में कोई प्रयोजन नहीं था महाराज, क्योंकि असली तत्व को जान लेने के बाद हैं, भगवान ने गीता में सब चीजों का वर्णन किया है, और वहां पर जो है पूर्ण रूपेण, और दूसरे अध्याय में ही सब कुछ भगवान ने समाप्त कर दिया कि समझा करके कि वेदों से और वेदों के तात्पर्य से आत्मज्ञानी का उतना ही मतलब रह जाता है जितना बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से व्यक्ति का मतलब रह जाता है ना। जब आपको हजार का नोट मिल जाए और हजार हजार के नोट ही मिलते चले जाएं, तो आपके दस के नोट से क्या प्रयोजन रह जाता है। समझते हैं आप, कुछ कुछ नहीं समझते। उसी प्रकार से महाराज जिस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने वाले को फिर इन, ये जिसको हम लोग जो है अपरा विद्या कहते हैं, अपरा से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये शुद्ध अंतःकरण वाले की स्थिति है। और इसीलिए यहां पर श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण पत्नियों को, राम कथा में जाओ तो महाराज जो है सबरी को, सबरी क्या थी, वेदज्ञ थी, शास्त्रज्ञ थी, लेकिन उसको भी मिले। यहां पर जो समझने योग्य चीज है वो ये है कि हमारा इससे मतलब नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे हैं, हम स्वस्थ हैं अथवा अस्वस्थ हैं, ऐसा नहीं कि भगवान केवल स्वस्थ व्यक्ति को ही मिलेगा। आत्म साक्षात्कार केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही है, अस्वस्थ के लिए नहीं है। ये कोई बाह्य सीमाएं जिसको हम लोग अपरा कहते हैं, अपरा के अंतर्गत आने वाला जितना भी जो कुछ है वो भगवान को प्राप्त करने की सीमा नहीं है कि ये मालूम होगा तभी भगवान मिलेंगे या आत्म साक्षात्कार होगा, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र जानना चाहे तो वेद का अंग है ज्योतिष शास्त्र। अब ज्योतिष शास्त्र आपको आना चाहिए, लेकिन अब महाराज अगर ज्योतिष शास्त्र नहीं आता तो क्या आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, क्यों भाई? वेद के पढ़ने का एक अंग है कि नहीं है, षडंग है, षडंगों में ज्योतिष शास्त्र भी आता। तो कहने का तात्पर्य यह है ये सब हमारी अपनी आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, और जो कुछ भी हम पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं उसके आगे की सीढ़ियां हैं फिर, है ना। बहुत सी चीजें जो हम लोगों ने पूर्व जन्म में या पूर्व में भी प्राप्त कर ली हैं और उसके परिणामतया हमको अंतःकरण की जो स्थिति प्राप्त हुई है उसके अनुसार ही हमारा आगे का क्रम आगे बढ़ने लगता है। तो यही यहां पर जो हमको तरह तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे आप वेदों में चले जाओ, चाहे आप जो है श्रीमद् भागवत में चले जाओ, पुराणों में चले जाओ, महाभारत में चले जाओ, जितने भी हैं वहां पर आपको पढ़े लिखे लोग जो जिनको हम लोग विद्या का सागर कहते हैं, ऐसे लोगों को भी आत्म साक्षात्कार करते हुए दिखाया गया, और महाराज बिना पढ़े लिखे लोगों को भी आत्म साक्षात्कार करते दिखाया गया। दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आत्मा में जाकर हम वहां उसको वेद नहीं सुनाएंगे, आत्मा से तो वेद स्वयं क्या हुए हैं। अरे वेद कहां से प्रकट हुए, आत्मा से प्रकट हुए या आपने वेदों को प्रकट करके आत्मा को भेंट दिया है? तो हम भगवान को वेद सुनाएंगे या भगवान हमको वेद सुनाएंगे? हम इसी जो है गलत धारणा में चले जाते हैं कि जैसे हम भगवान को वेद सुना के क्या कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे। अरे भगवान को समझना है कि वो जो परम तृप्त परमेश्वर है, जहां पर ज्ञान विज्ञान सब समाप्त हो जाता है महाराज जाकर के, संपूर्ण तृप्ति का अनुभव जिसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ऐसा जो ज्ञान विज्ञान तृप्त अवस्था है वो परमेश्वर का साक्षात्कार, यानी कोई भी ज्ञान विज्ञान उसको जो है किसी भी प्रकार से आकर्षित नहीं कर सकता है। तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो है उन ब्राह्मणियों के द्वारा, देखो यहां पर स्वयं सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब भगवान ने कहा कि अब तुम वापस जाओ और जो है गृहस्थ धर्म का जो तुम्हारे पतियों ने यज्ञ का संकल्प किया है उसको जाके करो, तो महाराज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहां देखो क्या कहा, मैवम विभोर हति भवान गदितुम न संसम सत्यम कुरुष्व निगमम तव पादमूलम। कहते हैं कि आप तो निष्ठुरता वाली बात करते हैं महाराज, कहते हैं सत्यम कुरुष्व निगमम तव पादमूलम प्राप्तः। कहते हैं महाराज आप तो अपनी वेद वाणी यानी श्रुतियों की वाणी जो है उसको सत्य कीजिए, क्योंकि हमने तो ये सुना है निगमों यानी वेद के द्वारा कि जो आपके शरण में आ जाता है यानी जो आपके चरणों की शरण में आ जाता है फिर उसको वापस लौटना नहीं पड़ता, यानी आवागमन से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता महाराज। हमने तो आपकी शरण ग्रहण कर ली है और आपकी शरण के बाद अब और किसी की शरण ग्रहण करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, फिर आप हमको वापस उन्हीं के पास क्यों भेज रहे हैं जिनकी अवहेलना करके हम आपकी शरण में आए, क्योंकि अब वापस जाने पर वो हमको बिल्कुल भी स्वीकार करने वाले नहीं है, है ना। देखो कितनी विचित्र बात है, स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आत्म साक्षात्कार कर लेने के बाद आपका फिर महाराज इस नकली संसार में कोई मन लगने वाला नहीं है, है? अरे भाई, जो कुछ भी करता है सब मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत करता है। किसके वशीभूत? स्वार्थ के वशीभूत, है ना? तो जो जो आपका स्वार्थ होगा आप उसी कार्य में क्या हो जाते हो? रत हो जाते हो। क्या हो जाते हो? है ना? देखा नहीं आपने, जो भी आपका सर्वोपरि स्वार्थ होता है उसके लिए आप खून पसीना सब क्या कर देते हो, है ना? तो जिस दिन आपका परम स्वार्थ परमेश्वर होगा तो आप परमेश्वर के लिए भी अपना खून पसीना क्या कर दोगे? भाओगे कि नहीं भाओगे? जब सांसारिक स्वार्थ के लिए हम अपना सब कुछ क्या कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं महाराज, सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए, तो महाराज जब इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने पुनः एक बार समझाया, क्योंकि बोले तुमको जो है मेरी शरण में आ जाने के कारण इस प्रकार के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान का प्रयोग जो है प्रभाव है। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, पतियो नाभ्यशूयेरन, कहते ना तो तुम्हारे पति ना तुम्हारे सूई यानी जो है पुत्र पित्र, ना तुम्हारे पिता भ्रात्र, ना तुम्हारे जो है भाई लोग, सुतादया कोई भी सुतादिक कोई भी लोकाश्च वो मायो पेता देवा अप्यनुवनते, कहते हैं किसी भी प्रकार से तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने जो है मेरा पूर्णतया सेवन किया है यानी मुझे स्वीकार किया है, और इसलिए अब तुम क्या करो, ना प्रियते अनुरागाय। बहुत समझने योग्य चीज देखो भगवान ने यहां बताई है, और यहीं पर भक्ति और वेदांत जो एक हो जाता है। हम लोग कहते हैं नहीं भक्ति अलग चीज है वेदांत अलग चीज है, और यहां पर भगवान ने जो आदेश दिया है, क्या आदेश दिया है यही समझने योग्य है महाराज इस जो है प्रकरण में। ना प्रियते अनुरागाय यंग संगो नृणामी तन्मनोमयी युंजाना अचिरान माम वाप्यशथ। भगवान कहते हैं देवियों कि ना प्रियते अनुरागाय यंग संगो नृणामी, यानी मेरे अंग संग रहना ही मेरे संग प्रीति नहीं है, अनुराग नहीं है। जो तुम ये सोचते हो कि अब हम भगवान के संग ही रहें और भगवान के संग रहना ही प्रीति है, तो भगवान कहते हैं ये प्रीति नहीं है, मेरे संग रह लेना, है ना? क्योंकि आपने देखा उदाहरणार्थ सुबह से शाम तक मंदिर में कौन रहता है? कौन रहता है? अच्छा, पुजारी का चिंतन कहाँ होता है? आने वाले सामान में, आने वाले धन में, क्यों भाई? होता कि नहीं होता? और जो एक सेकंड के लिए मंदिर गया उसका ध्यान कहाँ होता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये समझाना चाहते हैं। ये जो हम सोचते हैं महाराज, क्योंकि परमेश्वर शरीर से संबंधित नहीं है, ये जो बाह्य आवरण, ये जो बाह्य खोल है, क्यों भाई? आप लोग जो मुक्ता माला पहनते हैं, मुक्ता की माला पहनते हैं, वो मोती कहां से आता? अरे मोती का उत्पत्ति स्थान कहां है? सीपी के अंदर होता है कि नहीं होता है? ना, तो सीपी के अंदर क्या होता है? मोती। तो आप क्या करते हो, मोती से मतलब रखते हैं या सीपी से? मोती निकाल लिया और सीपी को, जिसके अंदर मोती था उसको हमने क्या कर दिया? फेंक दिया। क्योंकि हमारा मूल क्या है? हमारा मूल लक्ष्य तो मोती है हमारा। यद्यपि सीपी को, सीपी ने उसको प्रकट किया, लेकिन महाराज मूल लक्ष्य को हमने पकड़ा और जो गौड़ था उसको क्या कर दिया? फेंक दिया। उसी प्रकार से हमने संसार में उल्टा काम किया, गौड़ को, सीपी को पकड़ लिया और मोती को। अरे भाई, इस सीपी, मान लो थोड़ी देर के लिए आपका शरीर अगर सीप मान लिया जाए तो मोती क्या हुआ? अरे इसके अंदर बैठे हुए सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठे हुए परमेश्वर ही तो इस जो है देह की मोती है कि नहीं है? हैं? चिंतामणि कहो, मोती कहो, जो भी कहना चाहो आप महाराज, तो उसको आप जो है इस सीपी में, तो हमारा मतलब तो मूल से है। जैसे आपने सांसारिकता में उस मोती को स्वीकार करके महाराज जो है सीपी को फेंक दिया, उसी प्रकार से अध्यात्म में भी क्या करना है, इस सीपी को क्या कर दो। लेकिन महाराज हम इस सीपी के संग ही बंध गए है ना, इसीलिए हम भक्ति में चाहते हैं भगवान। लोग पूछते हैं महाराज भगवान कैसे मिलेंगे, अब सवाल इस बात का मिलेंगे नहीं, मिले मिलाए हैं, भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान तो हमको मिले हुए हैं, क्योंकि भगवान ने यहां पुनः एक बार उन ब्राह्मण पत्नियों को समझाया तन मनोमयुंजानाम, क्योंकि जब तक तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगाओ, भगवान कहते हैं तन मनोमयुंजानाम, अपने मन को मुझ में लगाओ, इसका परिणाम ये होगा अचिरान माम वापिसत, अचिरान मतलब तत्क्षण, कुछ ही क्षणों में तुमको मेरी जो है प्राप्ति हो जाएगी, अभी पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है ना। जब ये भाव समाप्त हो जाएगा कि जो है हम हमारे पति क्या कहेंगे, कैसे वो स्वीकार करेंगे, या उनका साथ हमको देना चाहिए या ना देना चाहिए, बोले ये सब जितने भी जो संदेह और संशय सब तुम्हारे जब निकल जाएंगे, ये कब निकलेंगे, जब तन मनोमयुंजानाम, जब तुम अपने मन को मेरे संग एकाकार कर दोगे है। इसी को कहते हैं साधारण भाषा में या शास्त्र की भाषा में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो मन ही वास्तविकता में जब तक जुड़ा नहीं, इसीलिए आपने जो है श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण सुना होगा, भगवान कपिल के जन्म के समय जब उनके पिता जो है कर्दम ऋषि भगवान से आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए मैं सन्यास ग्रहण करके वन में जाऊं और आत्म साक्षात्कार करूं। क्यों भाई कैसा लगता है सुनने में? अरे भाई जिसके घर में साक्षात पुत्र रूप में किसने जन्म लिया है, और वो भगवान को प्राप्त करने कहां जा रहे हैं, कैसा लगता, सही लगता या गलत लगता? भगवान तो सामने हैं, भगवान भी जानते हैं और वो खुद जानते हैं कि ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। लेकिन फिर महाराज भगवान भी आज्ञा दे रहे हैं, भगवान कहते हैं अरे पिताश्री आपको बाहर जाने की क्या जरूरत, मैं तो स्वयं साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूं, मेरे दर्शन करो। क्यों भाई यही होना चाहिए कि नहीं? और ऐसा नहीं कि भगवान को बताना पड़ेगा, वो स्वयं जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी वो बन जाने की भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं। और यहां भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं इन ब्राह्मण पत्नियों को कि तुम देवियों जो है पुनः अपने गृहस्थ जीवन में वापस जाओ और फिर से जो है एक बार अपने मन को मेरे संग एक करने की चेष्टा करो, है ना। ये जो हम सोचते हैं कि महाराज यह अंग संग भगवान के रहने पर भगवान के संग हमारा अनुराग है, ये केवल बाह्य भक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से एक पुजारी 24 घंटे भगवान के संग रहने पर भी उसका सारा चिंतन धन और चीजों पदार्थों के ऊपर होता है ना, उसी प्रकार से हमारी अवस्था है महाराज, रात दिन भगवान के संग रहकर उसी को भूले हुए हम उसको खोजने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन भगवान के संग जुड़ा है। तन मनोमयी युंजाना, जोड़ना पड़ेगा ये मन, जब तक परमेश्वर के संग एकाकार नहीं होगा तब तक उसका साक्षात्कार संभव नहीं। और इसी कार्य के लिए कर्दम ऋषि को अपने घर में साक्षात परम ब्रह्म को छोड़कर वन में जाना पड़ा, और वन में जाकर उन्होंने भगवान को क्या किया, प्राप्त किया, आत्म साक्षात्कार हुआ। कब हुआ, जब उनका मन पूर्णतया परमेश्वरमय हो गया, यानी जो गृहस्थ धर्म का पालन करते करते जो मल विच्छेद चढ़ा था उनके मन के ऊपर चित्त के ऊपर, जिस समय वो धुल गया तो महाराज फिर परम ब्रह्म में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया महाराज, जिसको हम लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो इस प्रकार से जब महाराज उन्होंने समझाया भगवान ने कि अब जो है तुम अपने मन को मुझ में लगाओ और उसके बाद जो है तुमको अचिरान तत्क्षण जो है क्या होगी, मेरी प्राप्ति होगी, बहुत शीघ्र ही मैं तुमको मिल जाऊंगा। कहाँ मिल जाऊंगा है, अरे भाई कुछ आप तो बताओ कहाँ मिल जाऊंगा, तुम्हारे अपने भीतर ही तुम्हारे अपने हृदय के आंगन में मैं क्या हो जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, और फिर तुम 24 घंटे मेरे संग रह सकती हो। फिर तुमको इस दुनिया में किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेनी पड़ेगी है? अरे आपके हृदय में जो चीज द्रणीभूत होती है उसका चिंतन करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ती है? फिर परम स्वतंत्र हो, लेकिन जब आप बाह्य जगत में बंधे होगे तो महाराज आपको उसके लिए आज्ञा भी चाहिए, घर वालों की अवहेलना भी सुननी पड़ेगी, घर वालों का तिरस्कार भी सुनना पड़ेगा। लेकिन जब अंतःकरण में आप स्थित हो जाओगे तो महाराज वहां तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। कहते हैं इस प्रकार से जब भगवान ने समझाया और जब वो देवियां जो है वापस पहुंची तो कोई भी दोष दृष्टि उनमें उन्होंने नहीं की। और एक बड़ा सुंदर यहां पर फिर से शरीर भाव से ऊपर उठने का जो रूप दिखाया गया है, कहते हैं तत्रैका विद्रता भर्ता भगवंतम यथाश्रुतम यदोपगुह्य विजहो देहम कर्मानुबंधनम। कहते हैं वहां पर एक ब्राह्मणी को उसने उसके पति ने तत्रैका विद्रता भर्ता, वहां पर एक पति ने जो है ब्राह्मणी को रोक लिया, जबरदस्ती करके उसका हाथ पकड़ लिया, तुमको नहीं जाना है वहां। इतना जोर लगाया महाराज और इसका परिणाम ये हुआ कि वो वहां से निकल नहीं पाई। और परिणाम तया महाराज उसने क्या किया, कहते हैं यथाश्रुतम जैसा भगवान के स्वरूप के बारे में उसने सुना था, हृदोपगुह्यम विजहो उसने अपने हृदय में हाथ पति ने पकड़ रखा महाराज और डांट रहा है, अब शब्द बोल रहा है, लेकिन महाराज वो अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते करते कहते हैं विजहो देहम सांसारिक शरीर का त्याग करके शुद्ध सत्वमय शरीर से महाराज वहां पर पहुंच गई। ये अवस्था है महाराज, ये है वेदांत का चरम, जिसको हम लोग कहते हैं विज्ञानमय कोष से निकलकर कहां पहुंच जाना, आनंदमय कोष की ये अवस्था है महाराज, जहां पर देह की संपूर्ण सीमाएं समाप्त हो जाती महाराज। उसका पति हाथ पकड़कर खड़ा है, लेकिन वो गोपी कहां पर है, वो ब्राह्मणी महाराज कहां पर है, भगवान के पास है, भगवान की शरण में है महाराज। कहते हैं हृदोपगुह्य विजहो देहम कर्मानुबंधनम, ये जो कर्म के बंधनों से बना हुआ शरीर है इसका उसने परित्याग करके महाराज भगवान की शरण को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से भगवान जो है उन ब्राह्मणियों को भगवान ने तृप्त किया, जो पहुंच गई उनको भी और जो शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाई उनको भी महाराज, है ना। क्योंकि हमारा जो मूल है वो क्या है, यही इस लीला के माध्यम से समझने योग्य। और उसके बाद जरा भगवान की विशेषता देखिए, किस लिए उसको परमेश्वर कहा जाता है महाराज, और क्या है अध्यात्म, है ना, सनातन संस्कृति क्या है। कहते हैं ब्राह्मणियां वापस चली गईं और फिर से भगवान की लीला प्रारंभ हो गई, जो सुंदर सुंदर भोजन प्राप्त हुआ था महाराज, है ना, सब वहां पर क्या लग गया, क्योंकि भोजन का ही तो सारा खेल था महाराज। कहते हैं भगवानापि गोविंदस्ते नैवानेन्य गोपकान चतुर्विधे नाशित्वा स्वयं चा भुवजे प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने उन ब्राह्मणियों के द्वारा लाया गया सुंदर चारों प्रकार का जो अन्न था हैं, वो सब पहले महाराज किसको खिलाया, पहले ग्वाल वालों को खिलाया, स्वयं चा भुवजे प्रभु, उसके बाद खुद खाया। देख रहे हैं आप, जिनकी कृपा से भोजन प्राप्त हुआ, ये हमारे यहां अहंकार शून्यता दर्शाई जाती है महाराज। जो भगवान जिनको हम कहते हैं, क्यों भगवान है वो, आत्मज्ञान है क्या आखिरकार, ये जो समझने योग्य चीज है वो है महाराज। नहीं तो भगवान कहते कि ग्वाल वालों पहले हम और मेरा और बलदाऊ का क्या लगाओ, क्यों भाई, देहाभिमानी क्या कहता, पहले मेरा भोग लगाओ और जब प्रसाद बन जाए तब तुम लोग खाना, क्यों भाई। लेकिन यहां उल्टा है, यहां कहानी बिल्कुल कैसी है, यहां गंगा उल्टी बह रही है, उन ग्वाल वालों का बचा हुआ बलदाऊ कृष्ण ने महाराज भोग लगाया, है ना, जो उन्होंने छोड़ा जब वो तृप्त हो गए। ये अध्यात्म है महाराज, कि आप अपने आप को मिटाकर किसको तृप्त कर सकते हैं, ये अध्यात्म नहीं है कि अपने आप को तृप्त करने के बाद जो बचा खुचा है वो दूसरे को देकर अपने आप को दानी मान लो, या त्यागी पुरुष मान लो महाराज, यहां पर कहानी बिल्कुल उल्टी है। भगवान ने पहले उन ग्वाल वालों को खिलाया, क्योंकि उनके लिए ही तो भगवान ने मंगाया था, है? और जब वो पूर्णतया हमारा तृप्त हो गए छोटे छोटे ग्वाल बाल, सुखदेव जी कहते हैं तब भगवान ने बलदाऊ के संग उस भोजन में से जो बचा था उसको क्या किया, ग्रहण किया, क्योंकि वो परम तृप्त है। हम लोग तो केवल गाते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, लेकिन तृप्ति अपनी कुछ नहीं होती, केवल कहने मात्र को हम अपने आप को तृप्त घोषित कर देते हैं, लेकिन यहां महाराज करना पड़ेगा, ऐसा स्वयमेव करना पड़ेगा, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी, है ना? जैसे आप भगवान को भोग लगाने का आनंद लेते हैं, लेकिन जब आपको प्राणी मात्र को तृप्त करने में क्या आने लगे, आनंद का अनुभव होने लगे, तब आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयी पश्यति, या इसको दूसरी भाषा में वासुदेवः सर्वम, जो कुछ भी है सब परमेश्वर है, इस भाव को वो प्राप्त होता है। कहते हैं जब भगवान ने इस प्रकार से उस भोजन को ग्रहण कर लिया, और दूसरी तरफ महाराज जो है उन ब्राह्मणों को ये पता चला, अथानुस्मृत विप्रास्ते अनवप्यत्यनकृतागशः यद विश्वेश्वरयोर्यांचाम मन महान्मा नविडाम्बयो। कहते हैं जब ब्राह्मणों को ये मालूम हुआ महाराज कि जो साधारण सा एक बालक, क्योंकि महाराज वेदज्ञ तो थे ही, ये समझने में देर नहीं लगी कि जो हमारे यमुना के तट पर आए हुए छोटे छोटे ग्वाल वाल नहीं बल्कि साक्षात भगवान ही है, तब महाराज उनको बड़ा पछतावा हुआ। और कहते हैं उस समय जो है उन्होंने जब अपने पत्नियों के हृदय में भगवान के प्रति उस अलौकिक प्रेम को देखा, है ना, यहां लौकिक प्रेम नहीं है क्योंकि पूर्णतया लीला में देह भाव से रहित अवस्था दिखाई गई है, भगवान ने जो समझाया उनको वो भी, और दूसरी जो उदाहरण के रूप में ब्राह्मणी दी गई है कि अपने कर्म के शरीर को छोड़कर सत्व देह से जो है भगवान की लीला में उपस्थित हुई, भगवान के समक्ष उपस्थित हुई, तो वो स्थिति यहां पर दिखाई गई कि जो जब उन्होंने अपने धर्म पत्नियों के हृदय में भगवान के प्रति अलौकिक प्रेम को देखा महाराज, तब उनको ये अनुभव हुआ कि हम तो वास्तविकता में अपने आप को भरा हुआ मानते थे, लेकिन हम थे बिल्कुल खाली के खाली महाराज, क्योंकि हमने, और उन्होंने फिर अपने आप को धिक्कारा, क्या क्या धिक्कारा, धिग्जन्म न स्त्री व्रत विद्याम धिग्व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाते तदोच्छचे। कहते हैं ये जो बड़ी बड़ी हमने विद्याओं को ग्रहण किया, ये जो बहुज्ञता का, हम इतने सारी चीजों के शास्त्रों के जानकार हैं, इतने बड़े कुल में, ब्राह्मणों के कुल में हमने जन्म लिया, ऐसे ऋषि के कुल में जन्म लिया, कहते हैं ये सारी क्रियाएं जो हमने दुनिया भर की यज्ञ आदि संपन्न की, ये सब बेकार हो गई, क्योंकि हम जो है परमेश्वर से विमुख, परमेश्वर से विमुख हो जाने पर हमारी संपूर्ण शुभ क्रियाएं, शुभ ज्ञान सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से, ये बात ध्यान देने योग्य है अध्यात्म में कि हम जो कुछ भी करें, इसीलिए तदीयम वस्तु गोविंदम तभ्यमेव हाँ समर्पित, जब भगवान को समर्पित हो जाती है, इसीलिए जो है यज्ञ करते हुए भी आहुति जब डालते हैं, इदम इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये सब किसका है, हाँ, तो जो कुछ भी हमारा पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना जो कुछ भी है सब किसके निमित्त है, परमेश्वर के निमित्त है। यही गलती हम लोग करते हैं, हम अपने आप को पढ़ाकर अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने आप को विशेष समझने लगते हैं, और ब्रह्म के लिए क्या कहा जाता है, ब्रह्म कैसा है, विशेष या निर्विशेष, फिर हम विशेष कैसे हो गए, हमने अपने आप को दूसरे से विशेष मान लिया कि हमारे सामने तो ये बिल्कुल भी ठहरता, भाई ब्राह्मण भी तो अपनी पत्नियों को यही समझते थे कि ये क्या है, निरी मूर्ख हैं, जिनको वो निरा मूर्ख समझते थे उन्होंने महाराज भगवान प्राप्त कर लिया, और अपने आप को जो है ज्ञानवान समझते थे उनको तो कुछ भी मिला नहीं, स्वयं उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम तो खाली के क्या है, क्योंकि जो प्राप्त करना चाहिए था उसी को हमने पूर्णतया हमारा नकार दिया। कहते हैं थे तो हम कहते हैं संसार के गुरु, लेकिन महाराज हमने भगवान को अपने से दूर कर दिया। कहते इस प्रकार से कितने आश्चर्य की बात है। कहते देखो अहो, कहते आश्चर्य है, अहो पश्यत नारीणाम अपि, कहते हैं ये नारियां हैं, लेकिन इन्होंने महाराज उस दुस्तर हैं संपूर्ण जो दुरंत दुरंत भावाम, कहते हैं जो भयंकर गृहस्थी की फांसी थी जो मृत्यु से भी कटती नहीं है महाराज, मृत्यु के बाद भी कटती नहीं है, उसको इन स्त्रियों ने महाराज काट करके फेंक दिया। हम तो केवल नासाम द्विजाति संस्कारो, इनका ना तो महाराज द्विजात संस्कार हुआ, ना निवासो गुरावपी, ना इन्होंने गुरुकुल में निवास किया, ना तपो ना तमीमासा, ना इन्होंने तप किया, ना तो बड़े बड़े मीमांसा शास्त्रों का जो है इन्होंने अध्ययन किया, ना शौचम ना क्रिया सुबह ना पवित्रता और ना बड़ी बड़ी शुभ क्रियाएं की महाराज, तथापि इन्होंने अथापि उत्तम श्लोके कृष्ण योगेश्वरे हरे, कहते इन्होंने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया महाराज। किसके कारण? क्योंकि वास्तविकता में जो शुद्ध हृदय है उसके लिए वो परम प्रकट है, अपरोक्ष है, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको तो केवल कितना करना है, जिस प्रकार से माचिस पूरी तैयार है और उस माचिस की एक रगड़ से ही क्या उत्पन्न हो जाती, और उसी माचिस को थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर क्या कर दो, पूरी आपकी तीलियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, मगर अग्नि, और अगर वो माचिस पूरी सूखी है तो आग जलाने के लिए कितना काफी है, एक तीली पर्याप्त है महाराज। और जहां आपने उसको पानी में डाला पूरी माचिस खाली हो जाएगी, मगर अग्नि प्रकट होने वाली नहीं है, है ना। बोलो अब एक बात बताओ निर्णय करके, हम सूखी माचिस हैं या गीली है कि नहीं, समस्या गंभीर है। पूरी माचिस खाली हो गई महाराज, लेकिन अभी तक जो प्रकट होना चाहिए था वो प्रकट सात्वत शांति अनंतता की अवस्था हमारा, मैं अखंड अनंत है, मैं जीने मरने वाला नहीं हूं, मैं मृत्यु वाला नहीं हूं, मैं जन्म वाला नहीं हूं, मैं इनसे परे अखंड अनंत अजन्मा है, जिसको कहते हैं ब्रह्म है, ऐसा स्वरूप है मेरा। उन ब्राह्मणियों ने प्राप्त कर लिया महाराज इस अवस्था को केवल एक बार की रगड़ से, क्योंकि अंतःकरण बिल्कुल क्या था, शुद्ध था महाराज। क्योंकि स्वयं यहां पर ब्राह्मणों ने स्वीकार किया कि कैसे भगवान दयालु हैं, कि उन्होंने महाराज याचक बनकर हमको चेतना दिलाई, लेकिन हम फिर भी चेतने के लिए तैयार नहीं हुए। यद्यांचा जन मोहिनी, भगवान की जगत मोहिनी माया है कि वो याचक बनकर जिनकी लक्ष्मी चरण दबाती है और वो छोटे से भोजन के लिए हमारे दर पर खड़ा है, ये माया नहीं तो और क्या है महाराज, ये भगवान की लीला नहीं तो और क्या है, जो संपूर्ण धरती का पेट भरने वाला है वो हमारे यहाँ क्या बन के आया, याचक बन के आया, और फिर भी हमको बात समझ में नहीं आई और हम भगवान को भिखारी और अपने आप को क्या समझते रहे, दाता समझते रहे महाराज, यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, भूल है। और इस भूल को सुधार लेना ही सत्संग है ना। तो इसलिए फिर से कल फिर जो है थोड़ा सा भाग पूर्ण करके पुनः जो है इंद्र यज्ञ निवारण, जिसको हम लोग कहते हैं, उस लीला में प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।